नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने सहित 3 विधेयकों पर संसद में चर्चा समाप्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का दे रहे हैं जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार पर इन विधेयकों से चुनावी मानचित्र बदलने का आरोप लगाया। हरवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी। और राज्य में जनगणना 2027 की आज से शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑनलाइन किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज 131वें संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। इन तीनों विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। तीनों विधेयकों पर अब से थोड़ी देर बाद मतदान होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक नहीं है और इसका महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इन विधेयकों को संसद में लाकर चुनावी मानचित्र बदलने का प्रयास किया जा रहा है। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि इससे दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को समाज में उनके उचित स्थान से वंचित किया जाएगा।
This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalit of their rightful place in society.
पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि ये तीनों विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण को पूरा करने के उद्देश्य से लाए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सामाजिक बदलाव लाने वाले किसी भी कार्य का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में जो बिल लाया है, उनके नेतृत्व की सरकार ने, वो उसी भावना को जो मातृत्व शक्ति 2023 से इंतजार कर रही है, उसकी उस भावना के अनुरूप, उसकी भावना को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने इस संविधान संशोधन विधेयक को लाया है इस सदन में। और इसलिए हम विपक्ष से अपील करेंगे, हट धर्मता छोड़ दी।
इधर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल देश के विकास में भागीदार हैं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने विधेयक को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह समावेशी शासन और महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश भर की लाखों महिलाओं की दशकों पुरानी आकांक्षाओं को पूरा करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री शाह ने कहा कि संसद के सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है।
इस चर्चा को अगर बारीकी से कोई शब्दों में ही सुनेगा तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है, इसका किसी ने विरोध नहीं किया। सबने बोलने के लिए तो बोला है, मगर उसको बारीकी से देखे तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए परिसीमन विधेयक लाया था। श्री शाह ने कहा कि 1976 में आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने परिसीमन पर रोक लगा दी।
1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दी। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगाई। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण देकर मुख्य धारा में लाने की शुरुआत की थी। श्री चौधरी ने पटना में कहा कि केंद्र सरकार भी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान कर रही है, इसमें सभी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए।
एक चीज लेकिन समझ में नहीं आती है कि कल से जिस विधेयक पर संसद में चर्चा हो रही है वो विधेयक 2023 में ही आया और उस समय संसद के दोनों सदनों में सभी दल के लोगों ने सर्वसम्मति से इसे पारित किया, फिर 3 वर्षों में क्या बदल गया कि आज विपक्षी पार्टियां इसमें कुछ अगर मगर लगा के इसका एक तरह से विरोध कर रहे हैं।
जदयू सांसद संजय झा ने महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से प्रतीक्षित कदम बताया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री झा ने कहा कि महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने का यह कदम काफी विलंब के बाद आया है और इसे सर्वसम्मति से समर्थन मिलना चाहिए।
स्वागत योग्य कदम है महिला आरक्षण जो आया 1/3, और मुझे लगता है कि बहुत ऑलरेडी लेट हो गया। मैं बिहार से आता हूं और बिहार में 50% से ज्यादा महिलाएं पंचायत में जीत के आती है। 2025 का चुनाव हुआ ना बिहार का भी, 10% ज्यादा महिलाएं वोट की है, आप समझ सकते हैं उनका रुझान कितना बड़ा।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्षी पार्टियों के विरोध पर कहा कि आने वाले समय में देश की आधी आबादी उन्हें सबक सिखाएगी। श्री सरावगी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने भी इस बिल को पास कराने के लिए सभी दलों से आग्रह किया है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कि विधायिका में भी कानून बनाने का अधिकार भी बहनों को मिलना चाहिए। इसमें जो भी विरोध करेगा आने वाले समय में देश के 50% आबादी है वो उनको जो है समय पर जरूर मजा भी चखाएंगे और उनको पता भी लगेगा। इसलिए सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया है, सभी लोगों को देश की 50% आबादी के हित को ध्यान में रखते हुए उनको भी इस संशोधन विधेयक को पास करना चाहिए।
पटना में आज नारी शक्ति वंदन थीम पर आधारित नारी शक्ति फॉर विकसित भारत दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ युवा कार्य और खेल मंत्रालय और माई भारत के सहयोग से आयोजित की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जेपी गंगा पथ से दौड़ को रवाना किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसमें पूर्व खेल मंत्री शेषी सिंह और लगभग 4,000 महिलाओं तथा छात्राओं ने भाग लिया। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश अपने साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विषय पर चर्चा का प्रसारण करेगा। यह विशेष कार्यक्रम कल शाम संध्या समाचार के बाद 7:52 पर सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने उनका नाम का प्रस्ताव रखा। राज्यसभा के उपसभापति का पद 9 अप्रैल को समाप्त होने के बाद रिक्त हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए इस पद के लिए श्री हरिवंश को मनोनीत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री हरिवंश को बधाई देते हुए कहा कि उनका वर्षों का अनुभव आज सदन के लिए पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी ने उनके नेतृत्व में सदन को अधिक प्रभावी होते हुए देखा है।
आदरणीय सभापति जी, सदन की ओर से मेरी तरफ से मैं श्रीमान हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। राज्यसभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना, ये अपने आप में इस सदन का आपके प्रति जो गहरा विश्वास है और बीते हुए कालखंड में आपके अनुभव का जो सदन को लाभ मिला है, सबको साथ लेकर चलने का आपका जो प्रयास रहा है, उसको एक प्रकार से सदन ने आज एक मोहर लगा दी है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी श्री हरिवंश को बधाई दी। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उपसभापति विपक्ष के हितों का ध्यान रखेंगे और सदन में उन्हें पर्याप्त समय आवंटित करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सचिवालय से भारत की जनगणना 2027 का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। श्री चौधरी ने कहा कि जनगणना सुशासन की आधारशिला है जो आगामी वर्षों में विकास योजनाओं, नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 2 मई से 31 मई तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सीएम सचिवालय में जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर पूर्व विधायकों, पूर्व विधान पार्षदों और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को फूल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही शासन और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश की सभी जेलों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। मुजफ्फरपुर, सिवान, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर और सीतामढ़ी जेल में हुई छापेमारी से सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के संकल्प को प्रदर्शित किया है। जदयू विधायक दल की बैठक 20 अप्रैल को बुलाई गई है। इस बैठक में विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा जाने के बाद यह पद खाली है। वर्ष 2026 की हज यात्रा कल से शुरू हो रही है। जायरीन का पहला जत्था देश भर के विभिन्न स्थानों से सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया, इस बार बिहार से 2552 जायरीन सहित देश भर से 1,75,000 से अधिक लोग भारत से हज यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मंत्रालय ने बताया है कि हज यात्रियों की सुविधा के लिए सभी हवाई अड्डों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। गोपालगंज जिले के सबया हवाई अड्डा को शुरू करने का प्रयास तेज हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम ने आज हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी पवन सिन्हा ने बताया कि हवाई अड्डा के लिए 274 एकड़ जमीन की जमाबंदी रक्षा मंत्रालय के नाम से कर दी गई है। वहीं शेष 158 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान लगभग 297 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इधर सिवान के गौरिया कोठी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक वाहन से 1218 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सुपौल जिले के भीमनगर स्थित सहरसा चौक पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में आग लगने से करीब 15 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही स्थित NH 27 पर सड़क हादसे में एक आशा कार्यकर्ता की मौत हो गई। भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर स्नान के दौरान फुलवरिया गांव निवासी 14 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज 131वीं संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक के पक्ष में 278 वोट पड़े। 211 सदस्यों ने जताया विरोध। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार पर इन विधेयकों से चुनावी मानचित्र बदलने का आरोप लगाया। हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी। और राज्य में जनगणना 2027 की आज से शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑनलाइन किया शुभारंभ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।